परम पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए पद्म पुराण के संक्षिप्त कथा प्रसंग में सृष्टि की उत्पत्ति जो ब्रह्मा जी के द्वारा हो रही है और ब्रह्मा जी संपूर्ण वृक्षों की उत्पत्ति किया, भूमंडल की उत्पत्ति किया, पशुओं की उत्पत्ति किया, पक्षियों की उत्पत्ति किया, इन सबके आहार की व्यवस्था किया, तो अब ये सब करने के बाद भी होता क्या है कि ब्रह्मा जी के इस सृष्टि में जो भूत हैं वो एक साथ मिल नहीं पा रहे, संयुक्त नहीं हो पा रहे, सब एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है कि सब एक दूसरे से प्रीति करे, एक साथ रहे तब कोई काम बने। रस्सी के जब धागे अलग अलग हो तो रस्सी नहीं बनेगी, यदि सूत अलग अलग हो तो ये शॉल नहीं बनेगा, ईटे अलग अलग हो तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। अब उसमें एकत्व करने की क्षमता कहां से आए? ये ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई तो उन्होंने कहा कि अब इनमें सब में मुझे अपनी शक्ति देनी पड़ेगी। फिर उन्होंने उसमें संयुक्त रहने की शक्ति प्रदान किया कि सब एक दूसरे में जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, तब तक प्रजा एक साथ नहीं रह पाएगी। इसलिए उन्होंने प्रजा में एक प्रेम शक्ति का संचार दिया, एक रजोगुण की शक्ति भरी, जिससे कि एक दूसरे से प्रेम करने लगे और सब मिलकर के रहे। तब जाकर के भूतों में ही कण कण में परमाणु परमाणु में एकत्व होने की क्षमता आई। तो यदि समाज में भी लोग है तो, लेकिन यदि एकता नहीं रहेगी तो यह जीवन चल नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा जीवन अन्न के अधीन है। अन्न कोई और उत्पन्न करता है, वस्त्र कोई और उत्पन्न करता है, और हम जो कार्य करते हैं, हम जो उत्पादन करते हैं वो भी समाज को देते हैं। इसलिए परस्पर भावना से, एक दूसरे के सहयोग से यह जो सृष्टि चलती है, इसमें जो प्रीति है, रजोगुण है, वह क्या है? कारण है। इसलिए परस्पर सहयोग से कार्य करने की शिक्षा यहाँ इस उपदेश के द्वारा मिलती है। कोई ब्रह्मा जी का यह बतलाया कि ब्रह्मा जी का कितना काल होता है, तो ब्रह्मा जी को पंडित लोग संकल्प में कहते हैं परार्थत्व जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे। दो परार्थ जीवन है उनका, उसमें एक कल्प में वो पूरी सृष्टि करते हैं और एक कल्प में पूरा नष्ट हो जाता है। तो दिन उनका एक कल्प का होता है और एक कल्प की रात्रि होती है। दिन में ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और रात्रि में वो सब चला जाता है, संहार हो जाता है। हाँ नहीं, एक कल्प में ऐसे प्रलय जैसा रहता है, अंधेरा रहता है। तो पूरा पूरा ऐसा हुआ एक बार कि ब्रह्मा जी को ऐसा जान पड़ा कि सृष्टि तो पूरी पानी में चली गई है, ऐसा क्यों हलचल हो रहा है, अंधेरा जैसा लग रहा है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, तो प्रलय काल था, उसने जो भगवती वसुंधरा थी उनको लेकर वो जल में डूबी हुई थी। अब जल में जो डूबी वसुंधरा है वो नहीं रहेगी तो प्राणियों का जीवन कहाँ रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि प्रभु आप जाएं और कुछ ऐसा उपाय करें कि यह पृथ्वी ऊपर की तरफ आवे। तो भगवान पुनः वराह का अवतार धारण करके, इस पुराण में भी यही वर्णन आता है कि वराह का रूप धारण करके श्री हरि और पृथ्वी को जाकर के लाते। कहा भगवान ने वराह का रूप क्यों धारण किया? कहा वराह जो होता है सुकर, बूंद उसमें यह क्षमता होती है कि वो गंध से ही धरती को पकड़ लेता है। जल में पृथ्वी जो डूबी हुई थी उसको वराह रूप में श्री हरि ने अपने दोनों दंष्ट्रों पर उठा करके ले आए। तो महर्षिगण उस समय उनकी बहुत सारी स्तुतियां किए कि प्रभु आपने बड़ा कल्याण किया, इस पृथ्वी को आप लाए, क्योंकि पृथ्वी तो नारायण की पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे। सुबह में बिस्तर से उठने के पहले भूमि की प्रार्थना का विधान है, उसी का यह मंत्र है कि हे पृथ्वी देवी, आपका जो वसन वस्त्र है वह समुद्र है, और जो पर्वत है वो आपका स्तन प्रदेश है, वहाँ से नदियाँ निकलती है, वहाँ से वनस्पतियाँ औषधियाँ निकलती है। जैसे माँ अपने बच्चे को स्तन पान करके जिंदा रखती है, उसी तरह पर्वतों से हमें आहार सामग्री और जल इत्यादि मिलते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन अभिप्राय यह है कि पर्वत स्तन मंडल वाली जो पृथ्वी है उसके पति साक्षात भगवान विष्णु हैं, और पुरुषों का यह कर्तव्य है कि अपने पत्नी का रक्षण करे। इस हिसाब से भी श्री हरि ने अपने कार्य को पूरा किया। ऋषियों ने कहा एकमात्र आप ही ऐसे परमात्मा है नारायण कि आपके द्वारा सबकी रक्षा होती है, बाकी कोई दूसरे में कोई इस तरह का तत्व नहीं है। जगत के उत्पत्ति के लिए, स्थिति के लिए और विनाश के लिए आप सब में हेतुभूत हैं। तो भगवान नारायण के द्वारा लाई गई जो पृथ्वी थी उसी पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया था, उसमें नौ प्रकार की सृष्टियां उन्होंने किया। पहले तन्मात्राओं की सृष्टि की, फिर दूसरी सृष्टि भूत सर्गों की किया, तीसरी सृष्टि इंद्रिय सर्गों का किया। जैसे मैंने आपको कल इंद्रिय के विषय में बतलाया था कि इंद्रियां रूप विषयों को ग्रहण करती है। फिर अहंकार की सृष्टि किया, फिर मुख्य शरीर की सृष्टि की, वृक्षों की सृष्टि की, पतंगों की सृष्टि की, देवताओं की सृष्टि की, फिर अनुग्रह सर्ग, ऐसे करके नौवां कौरमार सर्ग और प्राकृत सर्ग। इन सब सर्गों का, सर्ग मतलब सृष्टि, इन सब सृष्टियों का मुख्य हेतुभूत यही है कि जीव जब उत्पन्न होता है तो उसे आधार शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए वह आधार शक्ति भूमि है, और भूमि तभी सार्थक होगी, माता का गोद तभी सार्थक होता है जब उसमें पुत्र आ जाता है। तो भूमि की सार्थकता कब है? जब उसमें प्राणी रहे। हमारे भूमंडल में तीन भाग जो जल है और एक भाग स्थल है, तो स्वाभाविक रूप से जो पृथ्वी अंदर चली गई थी उसको ला करके जल के ऊपर स्थल पर रखा गया। आप कहेंगे इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि हम जब बोरिंग करते हैं, पंपिंग सेट लगाते हैं, तो जब खोदते हैं भूमि को तो नीचे से पानी आता है, इसलिए कह सकते हैं कि जल के ऊपर पृथ्वी स्थित है। तो जल के ऊपरी भाग में श्रीहरि ने जो स्थापित किया था, जिसका नाम है सर्वम शाह वसुंधरा, अष्ट पशुओं को वह धारण करने वाली है, रत्न गर्भा है, जिसके अंदर से भी रत्न निकलते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पक्षियों को उत्पन्न किया, अपने मुख से बकरों की उत्पत्ति किया, और अपने पेट से गायों की उत्पत्ति किया। कहा कि गायों की ही पूजा क्यों होती है? तो कहा कि प्राणियों में जब सबसे पहले जो रचना किया उन्होंने गायों की किया, इसलिए गायों की पूजा होती है। आज कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो तो बकरी के दूध की पूजा नहीं होगी, बकरी की पूजा नहीं होगी, हम गाय की पूजा करेंगे। फिर अन्य प्राणियों की, ऊंट खच्चर इत्यादि की ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, फिर यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद अथर्ववेद इत्यादि की उत्पत्ति किया, जिससे कि यज्ञ इत्यादि होते रहे, क्योंकि हमारे पास यदि साहित्य नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन दुर्बल हो जाएगा। तो अपने साहित्यों में चार वेद हैं, चार वेद के अलावे छह शास्त्र हैं, षट दर्शन हैं, सब छठ वेदांग है, पुराण है, इतिहास है, महाभारत को इतिहास बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण है, ये सब साहित्य है जो वेद से ही कालांतर में उद्भूत हुए। जैसे हम रोटी से आटा से रोटी बना लेते हैं लोट से, और उससे दूसरी पूड़ी भी बनाते हैं और नमकीन भी बना लेते हैं, उसी तरह से तरह तरह एक ही सृष्टि से नाना प्रकार के और उसमें विकृतियां उत्पन्न होते होते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए कि अब कई प्रकार के व्यंजन बनाने लगे। ये बुद्धि का विज्ञान है, इसलिए पहले बुद्धि उत्पन्न हुई थी। बुद्धि है क्या? तो यह लाल है, यह पीला है, इस तरह का विवेक जिसमें जागृत हो उसे बुद्धि कहते हैं। निश्चय आदमी का बुद्धि ही, जो निश्चय कर ले कि यह उचित है या अनुचित है, इस तरह से निश्चित करने वाले को बुद्धि कहते हैं। फिर जब प्राणियों वगैरह की सृष्टि कर लिया तो उनके लिए अन्न की उत्पत्ति किया और स्वयंभू मनु इत्यादि की उत्पत्ति किया। मनु से मनु की संतानें आई और उसमें आकुति, प्रसूति, देवहूति, श्रद्धा, लक्ष्मी इत्यादि उन संतानें आई। उन संतानों का एक एक करके वर्णन आगे आएगा, इसलिए मैं उन सारे बातों को न कह करके आगे चलता हूँ। एक बार की बात है कि देवता और दैत्य दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। देवता बहुत चिंतित हुए और चिंतित हो करके लोग कहाँ जाएंगे, अपने पितामह के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, महाराज हम आपके संतान हैं, कृपा करके हमारा कुछ कल्याण करें आप, ये असुर हमको रहने नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी महाराज श्री हरि के पास में देवताओं को लेकर गए, प्रभु कोई उपाय करिए, ये अपनी जो देव शक्ति है ये पराजित हो गई है, असुर लोग इनका राज्य हरण कर ले रहे हैं, यह तकलीफ का विषय है, क्योंकि असुर वही है जो दूसरे का भी ले लेता है, अपना तो लेता ही है, दूसरे का अंश भी ले ले, वही असुर है। आजकल है आतंकवादी तो वही है, आतंकवादी के रूप में भी महाराज जी और बहुत सारे आतंकवादी है जो आतंकवाद को पैदा किए हैं। विषमता जो है वही आतंकवाद के मूल में है, क्योंकि तेपि देवा निरातंका स्वाधिकारा न्यथा पूरा यज्ञ भाग भुजे सर्वे चक्रुर विनिहितारय। तो यह आतंकवाद देवासुर संग्राम के समय से ही पहले से चला आ रहा है। कहा कि आतंक कहां नहीं है, आतंक नहीं है यह कैसे जानेंगे? तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं निरातंको रंको बिहरति चिरं कोटि कनकई। कोटि कनक की मुद्राओं को, स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के जहाँ रंग व्यक्ति भ्रमण करे और उसे कोई पूछे नहीं कि क्या लिए हो, तो उस देश को हम जानेंगे कि यहाँ आतंक नहीं है, मतलब चोर इत्यादि का भय नहीं है। हाँ राम राज्य कहे इसको, मंदिर में तो राम राज्य ही है यार। तो एक गरीब एक भिक्षुक यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के करोड़ों मुद्राएं लेकर घूम रहा हो और कोई पूछे नहीं कि इसमें क्या रखे हो, लेने की चेष्टा नहीं कहे, तो वहां हम कहेंगे कि वह निरातंक देश है, भगवान शंकराचार्य के शब्दों में। तो यह जो आतंक है यह दूसरे के दमन से उत्पन्न होता है। जब समाज में समता के जगह पे विषमता फैलती है, लोग अपने अंश को तो खाते ही हैं, दूसरे के अंश को भी हजम करने के लिए जब उतावले हो जाते हैं तो यह विषमता का बीज होता है, तब उसमें से क्रोध और हिंसा ये सब सारी चीजें उत्पन्न होती है जो आतंक का रूप धारण करती है। और यह आतंक देवता दैत्यों का कम नहीं था। अब मुश्किल यह है कि जैसे जल में पृथ्वी चली गई थी, जीवन अस्त व्यस्त था, आज भी हम देख रहे हैं कि जो अचानक बरसात आ जाती है, धरती अप्लावित हो जाती है जल से, यह एक प्रकार का आतंक है, यह मनुष्य का दुष्चरित्र का प्रभाव है जिससे कि धरती अप्लावित हो जाती है। पूरा तो नहीं जा रही है लेकिन आंशिक रूप से जल प्लावन हो रहा है, कहीं मद्रास में, कहीं चाइना में, कहीं अन्यत्र विदेशों में जगह जगह होता है, सुनामियां आती हैं, ये सब एक आतंक का ही स्वरूप है। जल अत्यधिक हो जाना, अत्यधिक ऋतु का परिवर्तन हो जाना, ये सब आतंक है, क्योंकि तो हमारे दिमाग में जो आतंक फैला हुआ है उसका प्रकृति पर असर होता है। तो अब देवता लोग दानवों से परास्त होकर के श्रीहरि के शरण में गए। श्रीहरि ने कहा कि देखो भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा, पहले उन सबको मिलाओ, दैत्यों से जाओ मिलो और ऐसा कहो कि देखो हम अगर तुम मिल करके सागर का मंथन करें और उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत पान करेंगे हम लोग, तो हम और तुम दोनों ही अमर हो जाएंगे, ऐसे हमारे तुम्हारे झगड़े में क्या रखा है। तो सभी देवता लोग ने ब्रह्मा जी को आगे रख करके दैत्यों को बुला करके दैत्यों से मंत्रणा किया कि हम लोग समुद्र का मंथन करें और समुद्र मंथन करेंगे उससे अमृत निकलेगा और अमृत का हम पान करेंगे तो हम बलिष्ठ अजर और अमर हो जाएंगे। दैत्यों ने यह शर्त स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब कहते हो संधि करने आए हो तो चलो हम आपके साथ चलते हैं, आपके साथ हैं और अमृत मंथन और समुद्र मंथन का कार्यक्रम करो। श्रीहरि ने कहा था कि मंदराचल को मथानी बना देना, मथने वाला, और शेष नाग वासुकी को जो है वो रस्सी बना देना खींचने डुलाने के लिए, और मैं कच्छप रूप धारण करके नीचे बैठ जाऊंगा, हमारे ऊपर वो मंदराचल का वो रहेगा अंधभाग जिससे कि वो नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि सहारा तो चाहिए ना। हुआ ऐसे ही, मंदराचल बना, मथानी बना और रस्सी वासुकी बने। देवताओं ने सोचा कि ये मुख की तरफ हम रहेंगे तो जैसे जैसे वो रगड़े जाएंगे शेषनाग उनके मुख से जहर निकलेगा, वो जहर हम लोगों को मिलेगा, इसलिए पहले बुद्धिपूर्वक ये लोग मुख की तरफ ही गए। तो दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, सर्प का पूंछ पवित्र होता है, तुम लोग इधर आओ, हम लोग पवित्रता की तरफ, सर्प के मुख की तरफ जाएंगे। यह भी माया से वो चले गए उधर की तरफ जिधर वासुकी का मुख था, उधर से पकड़ने के लिए। संयोग ऐसा हुआ कि वो पकड़ करके रस्सा कस्सी खींचते खींचते जो वासुकी के मुख से जहर निकलता था उससे वो जलने लगे, तो थोड़ा उनमें कमजोरी भी आ गई। अभिप्राय यह है कि